बीती रात कशिश और ईशान की कुछ बातें हुई थी। ईशान ने अनजाने में अपनी जिंदगी के कुछ अच्छे पलों की यादें उसके साथ साझा की थी, पर माँ का जिक्र होते ही उसका मूड खराब हो गया और वो वहां से चला गया। कशिश उसके अचानक बदलते रवैये को देखकर कुछ उलझन में पड़ गई और उसे देखते देखते ही नींद की आगोश में समा गई। अगले दिन रजनी ने उसे सुबह 5 बजे उठा दिया, उसको तैयार किया, फिर घर में बने मंदिर में ले आई। कशिश महादेव की भक्त थी, इसलिए पूरे दिल और श्रद्धा भाव के साथ पूजा कर रही थी। उसके मधुर स्वर में महादेव के भजन से आज बनारस की सुबह हुई थी, और साथ ही मिश्रा निवास में भी सबकी सुबह उसकी सुरीली मीठी आवाज में महादेव के भजन से हुई थी। दोनों औरतें शुभ्रा, शुभिका, ईशान, रजनी सब वहां आ गए थे, या यूं कहें कि कशिश की सुरीली आवाज से सब खिंचे चले आए थे। यहां कशिश ने उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, इसलिए दोनों औरतें कुछ चिढ़ी हुई थीं। दोनों आदमी वहां आए तक नहीं थे। महादेव की आरती के बाद कशिश ने सबको आरती और प्रसाद दिया, फिर रजनी के साथ घूंघट से चेहरा ढके रामविलास जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। अंदर रामविलास जी अपने आराम कुर्सी पर बैठे थे और किसी गहन चिंता में लीन थे, जब उनके कानों में कशिश की मीठी सी खनकती हुई आवाज पड़ी, बड़े पापा, मैं अंदर आ जाऊं? रामविलास जी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आए और निगाहें गेट की तरफ घुमाई। गुलाबी बनारसी साड़ी में लिपटी, चेहरे पर घूंघट डाले कशिश सामने ही खड़ी थी। जाने रामविलास जी के मन में क्या आया कि उन्होंने उसे मना करने की जगह हामी भरते हुए आने की इजाजत दे दी। आ जाइए। कशिश को घूंघट के नीचे से कुछ दिख नहीं रहा था, वो जमीन को घूरते हुए कदम आगे बढ़ा रही थी। रजनी ही उसे संभाल कर अंदर लेकर आई, वरना जिस हिसाब से वो साड़ी में उलझ रही थी, 2-4 कदम चलते हुए 10-15 बार मुंह के बल जमीन पर जा गिरती। कशिश ने आरती की थाल रामविलास जी की तरफ बढ़ा दी और घूंघट के नीचे से ही मुस्कुराकर बोली, आरती ले लीजिए बड़े पापा, इंसानों से नाराजगी होती है, पर भगवान से कैसी नाराजगी हुई भला? कशिश की बात सुनकर रामविलास जी एक पल को ठिठके, फिर उन्होंने चुपचाप आरती ले ली। कशिश ने झट से प्रसाद उनके तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर प्रसाद नहीं लेंगे तो महादेव का अपमान होगा, प्रसाद का निरादर करना घोर पाप है। कशिश ने नाटकीय अंदाज में उन्हें डराया। एक बार फिर कशिश ने अपनी बातों से उन्हें मजबूर कर दिया। रामविलास जी ने प्रसाद की चुपचाप ले लिया। कशिश ने बिना एक पल गवाए झट से उनके चरण स्पर्श कर लिए। चलिए अब जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, आप घर में सबसे बड़े हैं, सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, और नई बहू को सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन रिश्तों को अच्छे से निभा सकूं, आप सबको शिकायत का कोई मौका ना दूं, और आपकी जो भी नाराजगी है उसे दूर कर सकूं। कशिश नॉनस्टॉप बोलती ही चली गई। उसकी बातें सुनकर रामविलास जी की निगाहें रजनी की तरफ घूम गई। रजनी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोली, आशीर्वाद दे दीजिए बड़े पापा, आपके ईशान की पत्नी है, शादी में तो शामिल नहीं हुए, कम से कम आशीर्वाद ही दे दीजिए। रामविलास जी एक बार फिर गहरी सोच में गुम हो गए। फिर उन्होंने कशिश को देखा जो अभी तक उनके पैर छुए आशीर्वाद का इंतजार कर रही थी। रामविलास जी थोड़ा हिचकिचाए, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, सदा खुश रहो। बस इतना ही कहा उन्होंने, पर कशिश की खुशी दुगनी हो गई। वो उठकर खड़ी हो गई और सौम्य सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोली, बड़े पापा, आज मैं सबके लिए खाना बनाने वाली हूँ, आप आएंगे ना खाने? उसका सवाल सुनकर रामविलास जी कुछ पल खामोश रह गए, फिर बिना किसी भाव के बोले, जाइए, हमें भी काम है। उनका जवाब सुनकर कशिश का मुंह छोटा सा हो गया, रजनी भी कुछ उदास हो गई। कशिश ने घूंघट की ओट से मायूसी भरी नजरों से रामविलास जी को देखा। जैसे ही दोनों जाने के लिए मुड़ी, उनके कानों में रामविलास जी की आवाज पड़ी, बहू, इतना लंबा घूंघट करने की आवश्यकता नहीं है, चलने में दिक्कत होती होगी, बस सर पर पल्लू रख लिया कीजिए। कशिश जो मुंह लटकाए उदास और मायूस सी बाहर जा रही थी, उसका चेहरा एक बार फिर खुशी से ताजे फूलों सा खिल उठा। रामविलास जी की बात सुनकर जहां रजनी कुछ हैरान हो गई, वहीं कशिश झट से उनकी तरफ पलट गई और सर हिलाते हुए मुस्कुरा उठी, जी बड़े पापा। इतना कहकर वो रजनी के साथ वहां से चली गई। सालों की नाराजगी जाने आज कशिश के सामने कैसे पिघल गई थी, रामविलास जी खुद ये बात समझ नहीं सके। आज वो अपने व्यवहार पर खुद ही आश्चर्यचकित रह गए थे, पर शायद सालों पहले जो हुआ था उसमें कशिश का कोई दोष नहीं था, और ना ही उन बातों से वो किसी प्रकार से जुड़ी थी। शायद इसलिए रामविलास जी उसके साथ बेरुखी भरा व्यवहार नहीं कर सके, पर गलती तो रजनी और ईशान की भी नहीं थी, ये बात अभी समझना बाकी था उनके लिए। जहां रामविलास जी अपने व्यवहार की वजह से खुद में ही उलझ गए थे, वहीं रजनी काफी खुश थी और कहीं ना कहीं उसके मन में उम्मीद की किरण जल उठी थी कि उसकी माँ की वजह से जिन रिश्तों में दरार पड़ गई थी, जिन दिलों में दूरियां पनप गई थी, उसे कशिश शायद कुछ कम कर सके और इन दिलों को एक बार फिर अपनेपन के एहसास से भर सके। रामविलास जी के बाद कशिश सुजीत जी के कमरे में पहुंची। इस वक्त वो पलंग पर बैठे हिसाब किताब लिख रहे थे। रामविलास जी के कहने पर कशिश ने अपने पल्लू को थोड़ा ऊपर कर लिया था ताकि सामने देख सके और चलने में परेशानी ना हो। उसने यहाँ भी दरवाजा नॉक किया, जिसे सुनकर सुजीत जी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। घर में नया चेहरा थी कशिश, इसलिए उन्हें उसे पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई कि सामने खड़ी लड़की ही ईशान की पत्नी है। कशिश ने उन्हें देखा और मुस्कुरा कर बोली, चाचा जी आज मैंने पूजा की है, पर आप पूजा में शामिल नहीं हुए, इसलिए मैं आपके लिए आरती लेकर आई हूँ। अंदर आकर आपको आरती दे दूं? एक तो उसकी मासूमियत से भरा प्यारा सा चेहरा, उस पर मिश्री से मीठी बोली, प्रेम से लबरेज अल्फाज, मासूमियत भरा आग्रह और महादेव की आरती। सुजीत जी चाहकर भी इनकार न कर सके, आखिर आरती लेने से इनकार करके अपने इष्ट देव का अपमान कैसे कर सकते थे वे। आ जाइए। जैसे ही उन्होंने इजाजत दी, कशिश चहकते हुए जल्दी से अंदर चली आई। सुजीत जी ने आरती ली, प्रसाद ग्रहण किया, फिर उठकर अलमारी के पास चले गए। कुछ मिनट बाद फिर कशिश के पास लौटे और आरती की थाल में पैसे रख दिए। कशिश ने आदर सहित उनके भी चरण स्पर्श कर लिए। मैं तो इस घर में नहीं आई हूँ चाचा जी, मुझसे कैसी नाराजगी हुई भला? फिर रिश्ते में आप मेरे ससुर हैं और ससुर पिता समान होते हैं, और पिता के आशीर्वाद पर सब बच्चों का बराबर अधिकार होता है। आप भी मुझे अपनी बेटी ना सही, बहू समझकर ही आशीर्वाद दे दीजिए। रजनी कशिश की वाक्पटुता की जबरदस्त फैन हो गई थी। लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उनसे अपनी बात मनवाना कशिश को बखूबी आता था। ये उसका हुनर था जो हर किसी की बस की बात नहीं। हालांकि वो कुछ जानती नहीं थी अभी, फिर भी जितना समझी थी उस हिसाब से अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी सिचुएशन को संभालते हुए एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाने की। सुजीत जी ने उसके सर पर हाथ रख दिया पर बोले कुछ नहीं। कशिश ने जिराफ जैसे गर्दन मोड़कर उन्हें देखा, फिर बच्चों जैसे गाल फुलाते हुए बोली, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं चाचा जी, मैंने पैर छुए हैं आपके, कुछ आशीर्वाद भी तो दीजिए चाचा जी, ऐसे बस सर पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। कशिश के बिंदास नेचर देखकर सुजीत जी हैरान थे। जरा नहीं घबराती थी वो, जो मन में आता बिंदास बोल जाती। बड़ों का लिहाज तो करती थी पर उनके सामने गुंगा बने रहने की आदी नहीं थी। पहली ही मुलाकात में जिस तरह का वो उनके साथ फ्रैंकली बिहेव कर रही थी, उनसे अपने मन की बात बेझिझक कह रही थी। वो कुछ अचंभित से उसे देखते ही रह गए। चाचा जी इतनी देर झुकी झुकी मेरे कमर टूट जाएगी, कशिश ने मुंह फुलाते हुए अपना दुख जाहिर किया। उसकी बात सुनकर सुजीत जी अपने ख्यालों के माया जाल से बाहर निकले।
खुश रहो, इतना कहकर सुजीत जी ने उसके सर से हाथ हटा लिया, पर कशिश अब भी वैसे ही झुकी हुई थी। इतने से आशीर्वाद से मैं नहीं मानूंगी, कहिए कि मैं खुश रहूं और साथ ही आप सबको भी खुश रख सकूं, एक अच्छी बहू बन सकूं और आपकी जो भी नाराजगी है उसे दूर करके इस परिवार को फिर से एकजुट कर सकूं। सुजीत जी कुछ पल खामोशी से उसे तकते रहे, कुछ अजीब से भाव उनके चेहरे पर मौजूद थे। कुछ पल बाद उन्होंने एक बार फिर कशिश के सर पर हाथ रख दिया। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, इतना कहकर वे वहां से चले गए। कशिश भी उनका आशीर्वाद, या यूं कहें कि अपना मनचाहा आशीर्वाद पाकर खुशी से चहक उठी और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद सब खाने के लिए इकट्ठे हुए थे और कशिश खुद खाना परोस रही थी। तभी ईशान तैयार होकर नीचे आया और आदतन किचन की तरफ निगाहें घुमाते हुए तेज आवाज में बोला, दीदी खाना ला दो। खाने की मेज के पास खड़ी रजनी कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही कशिश ने उसकी आवाज सुनकर ईशान की तरफ पलटते हुए कहा, मिश्रा जी सब खाने के लिए बैठ गए हैं, आप भी यहीं आ जाइए, मैं आपको भी खाना परोस देती हूँ। अब मेरे रहते आप दीदी को परेशान करें यह अच्छा थोड़ी लगता है, वैसे भी आज मेरी पहली रसोई थी तो मैंने खाना बनाया है, आप भी चक्कर बताइए कि कैसा बना है। ईशान के कानों में कशिश की आवाज पड़ी तो उसने चौंकते हुए आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई। वहां खाने की मेज पर उसका पूरा परिवार खाना खाने बैठा था और सबकी नजरें इस वक्त उस पर ही थीं। वहीं एक तरफ कशिश साथ में सब्जी का डोंगा और करछी लिए खड़ी थी, उसके साथ ही रजनी भी खड़ी थी। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए इश्क मुबारक।